नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दें तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। रिलायंस कम्युनिकेशंस ग्रुप के पूर्व प्रबंध निदेशक अमिताभ झुनझुनवाला को सीबीआई ने करोड़ों रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला भारतीय स्टेट बैंक से लिए गए 1200 करोड़ रुपए के सावधि ऋण, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिए गए 500 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ क्रेडिट और सिंडिकेट बैंक से लिए गए 350 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। एजेंसी ने पहले ही 16 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद में 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये 6 जून तक खुला रहेगा। सीबीएसई ने कहा है कि यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपये का भुगतान करना होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 81 अंक गिरकर 74,186 पर, जबकि निफ्टी 44 अंक लुढ़ककर 23,338 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।